Hindi Srimad Bhagavatam class on 10th canto, 5th chapter, verse number 30, given in Faridabad temple on 6th August 2015 by myself, Prashant Mukundas.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam. Devam Sarasvatim Vyasam. Tato Jayam Udire. Nashta Prayeshu Bhadreshu. Nityam Bhagavat Sevaya. Bhagavati Uttam Shloke. Krishnaya Vasudevaya, Devaki Nandanaya cha, Nanda Gopakumaraya, Govindaya namo namah.
Hare Krishna. Aaj ka स्कंद दसवां अध्याय पांच श्लोक संख्या 30 ये अध्याय का शीर्षक है नंद महाराज तथा वासुदेव की भेंट। तो हम इस श्लोक की चर्चा करेंगे और उसके बाद इस अध्याय पे जो कुछ भी समझ पाए उसको बताने का प्रयास करेंगे।
नूनं हि अदृष्टो निष्ठोऽयम् अदृष्टो परमो जना अदृष्टम् आत्मनस्तत्त्वम् यो वेदेन सम्मुह्यति नूनं हि अदृष्टो निष्ठोऽयम् अदृष्टो परमो जना अदृष्टम् आत्मनस्तत्त्वम् यो वेदेन सामुह्यति ॐ हि अदृष्टो निष्ठोऽयम् अदृष्टो परमो जना
निश्चय ही प्रारब्ध द्वारा नियंत्रित होता है, क्योंकि उसी से मनुष्य के सकाम कर्मों के फल निर्धारित होते हैं। दूसरे शब्दों में अदृष्ट प्रारब्ध के कारण ही मनुष्य को पुत्र या पुत्री प्राप्त होती है, और जब पुत्र या पुत्री नहीं रहते तो भी अदृष्ट प्रारब्ध के ही कारण होता है। प्रारब्ध ही हर एक का अनंतिम नियंत्रक है। जो इसे जानता है वह कभी मोहग्रस्त नहीं होता। तात्पर्य बाय दिव्यांग में श्रील प्रभुपाद की नंद महाराज ने अपने छोटे भाई वसुदेव को यह कहकर ढांढस बंधाया कि अंततो गत्वा प्रारब्ध ही प्रत्येक बात के लिए उत्तरदायी है। वसुदेव को इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए कि उसकी अनेक संतानें कंस द्वारा मार दी गई हैं, अथवा इसलिए कि उनकी अंतिम संतान जो एक कन्या थी स्वर्ग लोक को चली गई है।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशकारिणे।
तो ये जो अध्याय है इसमें नंद महाराज और वासुदेव जी की भेंट हो रही है, और इसके अंदर जो ये श्लोक बोला गया नूनम अदृष्ट निष्ठ हो रहे, तो ये यहाँ पर नंद महाराज वासुदेव जी को प्रीचिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वासुदेव जी दुखी थे कि उनके छह संतानें पहले मारे गए, सातवां गर्भपात हो गया, और आठवां जो कृष्ण स्वयं हुए वो तो गोकुल चले गए। लेकिन उनको वासुदेव जी को पता है, लेकिन नंद महाराज को पता नहीं है कि वही कृष्ण जो कि वासुदेव जी के यहाँ थे वो गोकुल पहुंच गए। लेकिन उनको प्रीचिंग कर रहे हैं कि आप परेशान मत होइए, ये जो भी कार्य हो रहा है इसके पीछे एक अदृष्टा है। अदृष्टा मतलब अनदेखा, और अनदेखा अदृष्ट ही हमारे को नियंत्रित करता है। तो हमारे जीवन में जो भी कार्य हो रहे हैं वो सारे के सारे कार्यों का कारण दो है, एक तो भगवान और दूसरा हमारे कर्म फल। तो भगवान हमारे कार्य के कर्म फलों के अंदर इंटरफेयर नहीं करते, उसमें दखल अंदाजी नहीं करते। अगर हमने गलत किया है तो हमें गलत भुगतना पड़ेगा, सही किया है तो सही भुगतना पड़ेगा मिलेगा हमको। लेकिन भगवान तो अंदर बैठकर हृदय में विराजमान होकर, और जैसे भगवान गीता में कहते हैं हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन मैं तुम्हारे हृदय के देश में विराजमान होकर क्या करता हूँ, देखता हूँ, और जो चीजें सही है जो चीजें तुम्हारे प्रारब्धों के अनुसार तुम्हें मिलने वाली है उनको मैं सैंक्शन करता हूँ, कहता हूँ ठीक है ये तुम्हें मिल जाना चाहिए। तो अदृष्टा जो है नियंत्रित करता है हमारे को, जो दिखता नहीं है कर्म फलों को। तो नंद बाबा
वासुदेव को समझा रहे थे कि आपके किस प्रकार से छह पुत्र कंस द्वारा मारे गए, बहुत दुख की बात है। और नंद बाबा और वासुदेव की जो ये भेंट हुई, ये मथुरा के बाहर एक बगीचा था, गार्डन, उसमें वहां पर उनकी भेंट हो रही है। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं कंस के पास गया तो फिर क्या होगा, दिक्कत होने वाली है, पता चल जाएगा उनको कि ये नंद बाबा आए बहुत खुशी खुशी इतना सारा टैक्स चुकाने के लिए, और फिर चर्चा हो सकती है, कोई बात हो सकती है। वासुदेव जी की भेंट तो पूछ सकते हैं, आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्यों आए हो आप। तो नंद बाबा वन में रहने लगते हैं और वहीं पर विराजमान होते हैं। जैसे हम कभी किसी से मिलने जाते हैं तो उनके घर के बाहर गाड़ी पार्क करते हैं, गार्डन होता है, वहां बैठकर कभी चर्चा करते हैं कुर्सी डाल के। तो ऐसे ही गाड़ी कहाँ पार्क करते हैं, अपनी बैलगाड़ी वहीं पार्क कर देते हैं, हाँ, मथुरा जो नगरी है उसके बाहर। और कंस को कर देने के रूप में वो वहां पर जा रहे हैं। तो नंद बाबा के घर में जब कृष्ण का जन्म हुआ तो हर एक चीज में वृद्धि होने लग गई, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो उनके खजाने में था वो एकदम से दुगना तिगना हो गया। तो नंद बाबा समझ नहीं पा रहे थे कि पुत्र के आने से, कैसे बोलते हैं ना, लक्ष्मी आई है या नारायण आए हैं, इनकी कृपा से एकदम से क्या लॉटरी लग गई, घर के अंदर एकदम बहुत पैसा धन आने लगा। तो नंद महाराज ने सोचा कि वैसे ही कंस जो है वो बड़ा परेशान है, क्योंकि उसने बोला है कि कोई ऐसा व्यक्ति, अद्भुत व्यक्ति बच्चा आएगा जो कि क्या करेगा, मुझको मार डालेगा, मेरी मृत्यु का कारण होगा। और कहीं उसको पता चल गया कि मेरे घर में धन में वृद्धि हो रही है, यही अद्भुत बालक है, तो मेरे पुत्र कोई मार ना सकता है। और इससे पहले कोई आए मेरा अकाउंट बैलेंस चेक करे कि कितना मेरे अकाउंट में डबल ट्रिपल हो गया है, उससे पहले ही इनकम टैक्स की रेट बढ़ने से पहले क्या करो, इनकम टैक्स का कर चुका दो। तो वो जा रहे हैं इनकम टैक्स का कर चुकाने। तो महावन गोकुल में नंद बाबा रहते थे उस समय। नंद गांव तो बाद में बसाया गया, लेकिन पहले महावन गोकुल जो है वहां रहते थे। और वहां से फिर वो गोकुल होते हुए मथुरा जा रहे हैं बैलगाड़ी से, तो इसलिए कि चाहे कोई रिस्क पेंडिंग ना रहे, पहले मैं ही जाकर कर चुका देता हूँ। कल को कोई आएगा कंस के यहाँ से कि बहुत दिन हो गए आपके यहाँ से कर नहीं आया, फिर देखेंगे अद्भुत बालक, इतना सुंदर बालक, फिर कोई जाके कंस को बताएगा, फिर क्वेश्चन ऑफ डाउट उठेगा, और फिर कोई आकर मारने आएगा कंस मेरे पुत्र को या उठाने आ जाएगा। इससे पहले ही मुझे क्या करना चाहिए, कर दे देना चाहिए। और फिर यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, भक्त पूछते हैं कि वासुदेव जी को पता था कि मेरे बड़े भाई नंद बाबा आए हैं, तो उनको बाहर ही मिलने क्यों गए, उनको वासुदेव जी ने अंदर क्यों नहीं बुलाया अपने घर में, वासुदेव नगर के अंदर, मथुरा नगरी के अंदर। तो वो जानते थे कि जो देवकी है वो स्त्री है, और स्त्री जो होती है वो कोमल हृदय की होती है। अगर स्त्री को मालूम पड़ा कि अरे नंद बाबा आए हैं, और इस तरह से बात चलते चलते और उन्होंने कहीं कुछ बात पूछ ली कि तुम्हारे पुत्र मारे गए और फिर आठवां पुत्र कहाँ चला गया, तो कहीं कोई बात खुल ना जाए। और तो वासुदेव जी जानते थे ये बात कि रात्रि को मैं कहीं ले गया था, कहाँ ले गया था मैंने बताया नहीं है देवकी को भी, तो पता चल जाएगा तो इस तरह से क्या होगा, सारी बात खुल जाएगी, तो इसलिए वो उनको दूर ही रखते हैं। तो इसी अध्याय के 24वें श्लोक में बता रहे हैं, आता है, दृष्ट्या संसार चक्र अस्मिनम वर्तमान पुनर्भव उपलब्धो भवान आघो दुर्लभम प्रिय दर्शनम। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ, इस अवसर को प्राप्त करके मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैंने फिर से जन्म लिया हो। इस जगत में उपस्थित रहकर भी मनुष्य के लिए अपने घनिष्ठ मित्रों तथा प्रिय संबंधियों से मिल पाना अत्यंत कठिन होता है। तो यहाँ पर जो है वसुदेव जी बोल रहे हैं कि मैं कौन हूँ, बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आज मैं आपसे मिल रहा हूँ, और इस अवसर को प्राप्त कर ऐसा लग रहा है मैंने दोबारा से नया जन्म ले लिया है। क्योंकि जब से कृष्ण को वो गोकुल छोड़कर आए थे तो उनको पता ही नहीं था मेरा पुत्र कैसा है, और बता भी नहीं सकते नंद महाराज को कि आपके घर में जो पुत्र है वो आपका नहीं है, मेरा है। तो इस बात को डरते डरते इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि आपका घर में सब कुछ ठीक है, आपके पुत्र आदि सब ठीक है, मैंने सुना है आपके घर में पुत्र प्राप्ति हुई है, सब कुछ ठीक है, और मेरी पत्नी जो रोहिणी, वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है रोहिणी, वो कहाँ है, नंद बाबा के घर पर रहती है, और उनके यहाँ कौन हुए, बलराम हुए हैं। तो जो इस तरह से इनडायरेक्टली उनको पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर एक बात और समझ में आती है कि भगवान को संतुष्ट करने से क्या होता है, सबसे ज्यादा हमको संसार में संतुष्टि प्राप्त होती है। हम लगे रहते हैं अपने रिश्तेदारों को संतुष्ट करने में, लेकिन कोई भी संतुष्ट नहीं होता। एक समय आकर सब लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही किया है, लेकिन यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अपने घनिष्ठ मित्रों तथा प्रिय संबंधियों से मिल पाना अत्यंत कठिन होता है। तो एक बार एक कथा में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हम इस प्रकार से हैं जैसे पेड़ के गिरे हुए पत्ते, जब नदी के अंदर गिर जाते हैं तो कुछ पत्ते साथ में आते हैं और फिर थोड़ी दूर चलने के बाद कुछ पत्ते अलग हो जाते हैं, लेकिन जब हम उनके साथ रहते हैं तो हमें लगता है बस जीना मरना इन्हीं के साथ में, ये घनिष्ठ मित्र है हमारे। लेकिन कोई भी घनिष्ठ मित्र नहीं है इस संसार में। अगर कोई मित्र है तो वो कौन है? कृष्ण। वो एक ऐसे मित्र हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ते, जैसे LIC वाले कहते हैं जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। लेकिन जीवन के साथ तो दे सकते हैं, लेकिन जीवन के बाद कैसे साथ देंगे? उसके बाद तो आपकी फैमिली के लोगों को पैसा मिलता है, लेकिन जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी एक्चुअली कृष्ण कहते हैं। कृष्ण है जो कि कहते हैं इस जीवन के साथ भी, और अगर अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए आपने शरीर का त्याग किया तो इस जीवन के बाद भी आपको मेरा संग प्राप्त होगा, और अगर स्मरण नहीं भी किया तो भी जो भी हमने अपने भक्तिमय पार्ग में जो प्रगति करी है, और अगर हम अंत काल में स्मरण नहीं भी कर पाए तो कम से कम एक ऐसे भक्त के घर में जन्म मिलेगा जहां से जहां प्रक्रिया समाप्त हुई वहां से शुरू हो सकती है। तो इस तरह से वहां पर उनकी चर्चा हो रही है वसुदेव जी और नंद महाराज की। अब उसके अगले श्लोक में वो कहते हैं न एकत्र प्रिय संवास सुहृदां चित्रकर्मणां ओघेन विहुमनानं पलायनं श्रोतस्य यथा। लकड़ी के फट्टे और छड़ियां एक साथ रुकने में असमर्थ होने से नदी की लहरों के वेग से बहा लिया जाते हैं। इस तरह हम अपने मित्र तथा संबंधियों से घनिष्ठ संबंध रखते हुए भी अपने नाना प्रकार के विगत कर्मों तथा काल की लहरों के कारण एक साथ रहने में असमर्थ होते हैं। तो हम सब कौन है, कितना भी प्रयास करें लेकिन अपने परिवार के साथ में रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये सब तो कर्मों के खेल से है। कौन कब उतर जाएगा इस गाड़ी से पता नहीं। जैसे एक ट्रेन पकड़ा आपने दिल्ली टू बॉम्बे और उसमें सारे स्टेशन में चढ़ गए, और उसके बाद में किसका स्टेशन कब आएगा किसी को नहीं मालूम, और सब अपने अपने स्थान पर उतरते चले जाते हैं। आप रोक भी नहीं सकते, अरे अरे प्लीज रुक जाइए मत उतरिए, आपसे बहुत प्रेम हो गया है, ट्रेन में बात करते करते आपने तो फोन नंबर भी एक्सचेंज किया, आप प्लीज मत जाइए। लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि सब लोग स्टेशन पर उतर रहे हैं लेकिन एक दिन हमारा भी तो स्टेशन आएगा, ऐसा हम सोचते नहीं है। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने यक्ष के पूछने पर जवाब दिया पश्यन अपि न पश्यते, सब लोगों को मरता हुआ देखकर हमें लगता है कि हम कभी भी नहीं मरेंगे, और इसी के कारण हम रात दिन बस फ्लैट और गाड़ी बनाने में लगे रहते हैं। एक फ्लैट एक गाड़ी, इसी के कारण सारा का सारा जीवन चला जाता है। इवन सुखदेव गोस्वामी महाराज एक जगह वर्णन कर रहे हैं कि व्यक्ति उस चूहे के समान है जो अपना बिल बनाने में इतना इतना बिजी है कि जो सर्प है मृत्यु रूपी वो उसके बिल के बाहर ही बैठा रहता है, और वो चूहा महाराज जो है वो अपने उस सर्प के ऊपर से उठ जाता है, मृत्यु के ऊपर से चूहा सर्प के ऊपर से जा रहा है अपने बिल के अंदर बार बार, और वो सोच रहा है सर कि कौन सा टाइम आएगा ये जब अपने बिल में जाकर शांति से बैठेगा और तब मैं क्या करूंगा इसका भक्षण करूंगा इसको खा लूंगा। तो वो इतना ज्यादा इग्नोरेंस में है, इतना तमोगुण में है, इतना अज्ञानता में है, इतना अविद्या में है, वो जान ही नहीं रहा कि जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ किस पर से जा रहा हूँ, सर्प के ऊपर से जा रहा हूँ, वही मृत्यु है। तो ऐसे ही हम भी अपने रिश्तेदार परिवार जनों के साथ में पार्टी मनाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू या मैरिज एनिवर्सरी टू यू, और उसमें भूल ही जाते हैं कि अरे मृत्यु भी हमारा इंतजार कर रही है। तो कभी ऐसा नहीं है कि फंक्शन नहीं बनाने चाहिए, लेकिन जो भी इस प्रकार के कार्यक्रम हो उसमें सदा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। तो क्या बोलना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हमें समझना चाहिए कि मृत्यु हर पल इंतजार कर रही है, कब आ जाए पता चला, अभी तो हम एंजॉय कर रहे हैं, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा, और मजा लेते लेते पता चला मृत्यु आ गई, वो सर्प ने भक्षण कर लिया, फिर क्या करेंगे। तो इसलिए हर वक्त कृष्ण स्मरण रहना चाहिए, जो कुछ भी आज है वो भगवान की कृपा से है हमारे पास, ऐसा सोचना चाहिए। और जो ये प्रारब्धों का खेल है ये तो बड़ा विचित्र है, मालूम ही नहीं पड़ता कब क्या होने वाला है, कौन हमारे बीच में से चला जाएगा। किसी का पुत्र होता है लेकिन पिताजी नहीं होते, किसी के पिता होते हैं लेकिन पुत्र चला जाता है उनके सामने सामने। तो इस तरह से ये प्रारब्ध हुआ खेल है। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब था, न नौकरी है, न पत्नी है, न घर है, न गाड़ी है, मैंने इतनी एजुकेशन लेके फायदा क्या हुआ मेरी लाइफ का, मेरी लाइफ तो वेस्ट हो गई। तो बड़ा डिप्रेशन में आकर सुसाइड करने चला गया, बोला पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अभी जब जा रहा है पहाड़ से कूदकर जान देने के लिए, तो उसी पहाड़ के नीचे स्थान पर एक नदी का किनारा था, और उस नदी के किनारे में बहुत सारे स्त्रियां स्नान कर रही थी, जो कि राजकुमारी की दासियां थी, राजकुमारी भी थी और उसकी दासियां भी थी। और वहां पर दूर उनके सैनिक सिपाही खड़े थे। राजा ने कहा था, देखो मेरी जो पुत्री है वो स्नान आदि करने जा रही है, तो उनको क्या हो, परेशानी ना हो, कोई व्यक्ति बीच में उनको डिस्टर्ब ना करे, है ना, तो सिक्योरिटी जानी चाहिए साथ में। तो सिक्योरिटी लेकर वो गए, और वहां पर वो जो व्यक्ति था इतना डिप्रेशन में था कि वो सुसाइड करने वाला था। श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री गौड़ काय की जय, अतिथि पावन श्रील प्रभुपाद की जय। तो वो वहां पर सुसाइड करने जा रहा है, और जब वो नीचे देखते हैं कि वो जो स्त्री स्नान कर रही थी राजकुमार आदि दासियां, तो पीछे से मगरमच्छ आ रहा था उनको खाने के लिए। अब यहाँ पर जो सिपाही हैं उनके पास दुविधा है, ना तो वो स्त्रियों के पास जा सकते हैं कि भाई यहाँ पर चले गए तो राजकुमार भैया जो है वो कल को शिकायत कर सकते हैं कि हम स्नान कर रहे थे और ये जो सिपाही थे आपके पिताजी सैनिक ये आ गए वहां पर, तो हमारी जान चली जाएगी। तो दूर से इशारा कर रहे थे कि हट जाओ, वहां पर कौन है, मगरमच्छ है, वहां मगरमच्छ आ रहा है। लेकिन वो तो अपने खेलने में जल क्रीड़ा में मग्न थी, उन्होंने किसी ने भी देखा नहीं। इतने में ये जो युवक था ऊपर से डिप्रेशन के कारण कूद पड़ा कि मेरे पास न पैसा है, न पत्नी है, न घर है, न गाड़ी है। और इस डिप्रेशन में जब कूद गया तो आकर कहां गिरा, बिल्कुल जहां पर मगरमच्छ बिल्कुल खाने वाला था, मगरमच्छ के ऊपर गिरा। तो मगरमच्छ को क्या लगा, एक बहुत बड़ा सा पत्थर आकर मेरे ऊपर गिरा है। तो मगरमच्छ घबरा कर वापिस चला गया। लेकिन जो सिपाही थे उन्होंने कहा, वो दौड़ कर आए वहां पर, कौन आ गया। तो लड़कियां बोली, नहीं, एक मगरमच्छ था, हमको खाना चाहता था, और इस बहादुर युवक ने हमारी जान की रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। तो जान रहती देने वाला था, अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी जान की रक्षा करी, तो इसको तो क्या करना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए। तो लेकर चले गए राजा के पास में। राजा बोले, वाह ऐसा बहादुर व्यक्ति तो मुझे अपनी पुत्री के लिए चाहिए था। मैं तो सोच रहा था कब ऐसा कोई युवक मेरे पुत्रियों को मिलेगा। तो ठीक है, आज से मेरी दो पुत्रियां हैं, तो एक पुत्री का आपका शादी कराते हैं, स्वयंवर कराते हैं, वर दे देते हैं आपको, और उनका विवाह करा देते हैं। अभी लड़कियां भी मिल गई उनको, वो भी कौन, राजकुमारी। और साथ में मैंने सोचा था, राजा बोला कि आधा धन मैं अपनी एक पुत्री को दे दूंगा अपने राजकोष को, आधा धन भी मिल गया। और जॉब बोले, आज से आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड की गद्दी पर बैठोगे, जॉब भी मिल गई। और गाड़ी बोले, आने जाने के लिए रथ बाहर खड़ा हुआ है, उसमें आप आया जाए। तो मतलब 5 मिनट में क्या हो सकता है हमको मालूम ही नहीं है। तो ये कहते हैं अदृष्टा, जो देखा नहीं गया, अनदेखा, उसके कारण कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे जब कोई भक्त बनता है तो उसे पता थोड़ी होता है कि कब मेरे कौन सा प्रारब्ध के कारण मुझे भक्तों का संग मिलने वाला है। कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रारब्ध उदय हो सकते हैं, सुकृतियां उदय हो सकती हैं, और वो क्या हो सकता है, भक्तों के संग में आ जाए। पता चला जैसे भी जन्माष्टमी आने वाली है, तो हम लोग भी बहुत सारे अनजाने लोगों को बोलेंगे, पैम्फलेट देंगे, आइए 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 आइए, और उसमें से बहुत सारे लोगों का मन में जो सुकृतियां उदय होंगी तो वो यहाँ आ जाएंगे। किसी की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुकृतियां होंगी तो वो भक्ति मार्ग में पालन करने लग जाएगा, और फिर वैष्णवों की कृपा के कारण वो भक्त भी बन सकता है, जैसे हम लोग बन गए सब इसी प्रकार से। तो ये है प्रारब्ध अदृष्ट अदृष्ट का जो खेल है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार बता रहे थे उनके एक भक्त, तो श्रील प्रभुपाद कुंभ के मेले में थे, और कुंभ के मेले में एक व्यक्ति अपने पुत्र को लेकर आता है, और प्रभुपाद अपने अनेकों भक्तों के साथ में कुंभ मेले में कीर्तन आदि कर रहे थे। तो आया और बोला कि स्वामी जी मैं आपके चरणों का अभिषेक करना चाहता हूं। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए। तो पीछे पड़ गया, कहता है मैंने आपके सारे शास्त्र पढ़े हैं, मैंने आपकी गीता भी पढ़ी है, मैंने आपका पूरे विश्व में जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में भी सुना है, तो मुझे आपके जैसा कोई आचार्य नहीं मिलेगा, आप मुझ पर कृपा करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कर लो। तो उन्होंने क्या किया, एक कमल जो था, कमल नीचे रखा, उसमें नीचे एक बहुत बड़ा सा बर्तन रखा, जल लिया और जल से अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद तुरंत ही अपने पुत्र को पिला दिया। तो प्रभुपाद जी ने देखा ये क्या किया तुमने, अपने पुत्र को पिलाया। हाँ, कह रहे ये बहुत ही ज्यादा आपका क्या है, फैन है, आपके बारे में पूछता रहता है। तो प्रभुपाद जी बोले अच्छा कुछ जानते हो, तो उसने संस्कृत के कुछ श्लोक सुनाए। प्रभुपाद ने पूछा हु इज कृष्ण, हु इज गॉड, भगवान कौन है, तो बोला कृष्ण राम। उसने सारा कुछ बताया, वर्णन किया, संस्कृत श्लोक सुनाया। प्रभुपाद बोले वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, तो आप एक काम करो, अगर आप मुझे इतना भरोसा करते हो तो एक मुझे दक्षिणा दो, और क्या ये अपना पुत्र मुझे दे दो। अभी तो आसक्ति के कारण व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा पुत्र जो है वो आगे जाकर मेरे लिए बहुत काम करने वाला है, मैं इसे दे नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी ने दो तीन बार समझाया, नहीं नहीं दे दो। अब बोला नहीं, आप कहाँ प्रचार में लगे, इसको एजुकेशन बाकी है, पढ़ाना बाकी है, कहाँ देंगे हम आपको। नहीं नहीं इसे दे दो। प्रभुपाद जी बोले हमारे बहुत सारे भक्त स्कॉलर है, टीचर्स है, वो पढ़ा लेंगे, आप इसे दे दो। तो वो दिया नहीं, मना कर दिया। फिर कुछ वर्षों बाद श्रील प्रभुपाद जी के भक्त वो आए कुंभ मेले में, कई सालों बाद दोबारा जब कुंभ आया तो उन्होंने देखा इलाहाबाद के कुंभ में किनारे पर क्या हो रहा था, संगम के किनारे पे बहुत सारे भीड़ लगी हुई थी और एक युवा सन्यासी वहां बैठा हुआ था। और वो युवा सन्यासी जो था उसके आसपास बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, उसके जय जयकार कर रहे थे। तो उन्होंने जाकर भक्तों के वो बीच में से सन्यासी ने जब देखा कि जो भक्त है इस्कॉन के वो जा रहे कीर्तन करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसने देखा और जितने भी ग्रस्त डिवोटीज थे या ब्रह्मचारी थे या सन्यासी थे, उसने उठकर दंडवत प्रणाम किया। वो खुद जो सन्यासी है जिसके आसपास अनेकों 300-400 सन्यासी बैठे हुए उसके साथ में कथा सुन रहे हैं, वो अपनी गद्दी से उठकर प्रणाम करने लगा। तो उन्होंने पूछा भाई आप कौन है, आप बड़े युवा है, आपके चेहरे पे बहुत तेज है, आप कौन है। तो बोला आपने पहचाना नहीं, मैं तो आपको पहचान गया। कह रहे नहीं हमने तो नहीं पहचाना। कह रहे एक बार आप अपने स्वामी श्रील प्रभुपाद स्वामी जी के साथ में यहाँ आए थे और मैं अपने पिता के साथ आया था, तो आपके प्रभुपाद जी जो थे स्वामी जी उन्होंने कहा कि इसे हमें दे दो, लेकिन मेरे पिता ने आपको दिया नहीं, लेकिन मैंने उनके चरणों का जल पिया था, उसको पीने से मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई कि आज हमारी जो संप्रदाय है वो रामानंदी संप्रदाय का ब्राह्मण था। हमारे संप्रदाय में बहुत ज्यादा वाद विवाद चल रहा था, मैं मठाधीश बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, और उसमें डिविजन्स हो गए थे, संप्रदाय की अप संप्रदाय बन गई थी। लेकिन मैंने कुछ ही वर्षों के अंदर उन स्वामी जी के चरणों के जल की कृपा से सारे संप्रदायों को जोड़कर एक संप्रदाय में लेके आया हूँ, रामानंद संप्रदाय में, और उसको आज मैं नेतृत्व करता हूँ। तो किसकी कृपा से हुआ, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की। तो ये है कौन सा कर्म फल, कौन सा एक्शन कब आपका जीवन बदल देगा हमें मालूम नहीं है। एक तो अदृष्टता पहले से ही चला आ रहा है हमारे जीवन में, जिसे हमने देखा नहीं है, और कई चीजें हम आज भी उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते थे, मटेरियल मैन इज एन स्लेव ऑफ हिज डेस्टिनी एंड डिवोटी इज एन आर्किटेक्ट ऑफ हिज डेस्टिनी। जो एक भौतिकवादी व्यक्ति है वो दास है अदृष्टता का, कर्म फलों का, लेकिन जो भक्त है वो क्या कर सकता है, वो आर्किटेक्ट है, वो अपना भविष्य खुद निर्माण कर सकता है। दिस लाइफ इज ए प्रिपरेशन फॉर द लास्ट एग्जामिनेशन। ये जो जीवन है ये क्या है, तैयारी है अंतिम समय में जो पर्चा आने वाला एग्जाम परीक्षा आएगी। तो इसके कारण हमें क्या करना है, आज अपने कर्म फलों को बदलना चाहिए। ध्यान पूर्वक हम जब करें तो हम अपने जीवन में आने वाले प्रारब्धों को भी टाल सकते हैं। जो आने वाले हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो अब हम क्रिएट कर रहे हैं अपने एक्शंस अपने कर्म, उन्हें हमें बदलने का पूरा पूरा हक है। जैसे बताया गया भगवद गीता में कि भगवान काल प्रकृति जीव और कर्म इन सब चीजों में से सिर्फ एक ही चीज फिक्स नहीं है, वो है कर्म, जिसको आप बदल सकते हैं जीवन में। तो ये जो अदृष्टता है इसी के कारण हमें जन्म मृत्यु मिलने वाली है, इसी से हम लोगों से मिलते हैं, इसी अदृष्टता के कारण हम लोगों से अलग भी हो जाते हैं। कितने स्कूल फ्रेंड्स थे, कॉलेज फ्रेंड्स थे, जिनके साथ वादा किया था बस साथ में रहेंगे साथ में पढ़ेंगे, लेकिन वो छोड़कर चले जाते हैं। तो ये अदृष्टता कर्मों के फलों के कारण होता है। जैसे बता रहे हैं कि जो देवकी के ये 6 पुत्र थे, ये स्वयं मनवंतर में ऋषि मारीचि के पुत्र थे और उनकी माता का नाम था पूर्णा। उनकी गर्भ से पूर्णा और मारीचि के घर में ये 6 पुत्र होते हैं। लेकिन ये ब्रह्मा जी जब अपनी पुत्री को उत्पन्न करते हैं और उसी से मोहित हो जाते हैं, लीला आप जानते हैं, तो ये ब्रह्मा जी के ऊपर हंसने लग जाते हैं। अरे देखो कैसा पिता है, अपनी पुत्री को ही उत्पन्न कर कर उसी से मोहित हो गए हैं। जब इस प्रकार से हंसते हैं तो ब्रह्मा जी उनको श्राप देते हैं कि तुम्हारा जो व्यवहार है वो असुरों जैसा है, राक्षसों जैसा, तो तुम क्या करो, राक्षसों के घर में ही जन्म लो। तो ये कहाँ आते हैं, हिरण्यकश्यपु के घर में जन्म लेते हैं। तो हिरण्यकश्यपु के घर में जब ये आते हैं 6 के 6 पुत्र, लेकिन क्योंकि ये मारीच के एक ऋषि के पुत्र थे तो इनके मन में ये था कि भगवान कौन है, कृष्ण है, ये जानते थे। तो हिरण्यकश्यपु जब बोलता था कि मुझे भगवान मानो, तो ये भगवान मानने को तैयार नहीं थे। तो हिरण्यकश्यपु ने भी कहा कि मैं तुम्हारे को क्या करता हूँ, श्राप देता हूँ कि अब आने वाले समय में जब तुम दोबारा जन्म लोगे तो फिर तुम अपने पिता के द्वारा ही मारे जाओगे, क्योंकि अभी तो मैं तुम्हें मार नहीं सकता, क्योंकि तुमने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है जैसे मैंने लिया है कि इमोर्टल, हम अमर होने वाले हैं। वो तो भगवान के अंदर बुद्धि थी कि अमर को भी वरदान को कैसे खत्म करना है, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार लेना है। लेकिन हिरण्यकश्यप को लगता था हमने जो वरदान मांगा है अब हम मरने वाले नहीं है, तो उसे लगा ये भी मरने वाले नहीं है। लेकिन उसने क्या श्राप दिया कि अब जब तुम्हारा दोबारा जन्म होगा तो तुम अपने पिता के द्वारा ही मारे जाओगे। तो चर्चा है कि हिरण्यकश्यप कौन बनते हैं, कंस है। जब हिरण्यकश्यप जय विजय जब कंस बनकर आ रहे हैं तो उसके 6 पुत्र जिनको इमोर्टलिटी मतलब अमर रहने का वरदान था, लेकिन वो भगवान के द्वारा अदृष्टा के प्रारब्ध फल के कारण, अकर्म फल के कारण मारे जाते हैं समय और काल के अंदर, क्योंकि काल किसी को भी नहीं छोड़ता। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो ये कहे कि मैं हमेशा हमेशा जीवित रहने वाला हूँ, स्वयं ब्रह्मा जी भी जीवित नहीं रहते। तो फिर इस प्रकार से वो 6 पुत्र जो देवकी के हुए वो कौन थे, जो हिरण्यकश्यप के भी उन्हें श्राप मिला था। तो इस प्रकार से कंस के द्वारा ही वो उनके पुत्र मारे जाते, अपने ही पिता के द्वारा। कंस जो है वो उनका पिता रहा हिरण्यकश्यप, और उनके द्वारा वो 6 के 6 पुत्र मारे गए। और फिर उनको वापस उधर धाम प्राप्त हुआ, वो जगह जहां ऋषि मारीच रहते थे उस लोक में वो पहुंच गए। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो कर्म फलों के कारण है, लेकिन भक्त के जीवन में भगवान इंटरफेयर करते हैं। जैसे एक बार रिजोलिनस राधा नाथ स्वामी महाराज से एक भक्त ने पूछा कि महाराज हमारे जीवन में क्या ये जो ग्रह आदि हैं बृहस्पति शुक्र सोम ये सब असर करते हैं। तो उन्होंने बताया कि देखिए हमारे एक बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, वो भक्त भी हैं, और उनके पास जब कोई इस्कॉन टेम्पल से जाता है कहता है मैं इस्कॉन से आया हूँ, तो कहते हैं सॉरी नो अपॉइंटमेंट्स। तो उन्होंने पूछा कि क्यों मना क्यों करते हैं, बोले देखिए जब कोई कृष्ण शरणागत होता है जब वो पहले दिन अपने दोनों हाथ ऊपर करके बोलता है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम, जब कोई पहली बार इस प्रकार से बोलता है तो उसी प्रकार वो क्या करता है, दोनों हाथ मतलब सरेंडर कर देता है, अभी और अपनी माया मत चलाओ भगवान हम सरेंडर किए। जैसे बैंक में डकैत आते हैं या लुटेरे आते हैं तो क्या कहते हैं हैंड्स अप, तो सब हाथ ऊपर कर लेते हैं। ऐसे ही हम भी भगवान की माया के आगे हाथ ऊपर करते हैं, भगवान अब और नहीं बस अब हमें अपनी शरण में ले लीजिए, तो हम शरण में चले गए। तो जब भक्त शरण में चले जाते हैं तो फिर उनके ऊपर ग्रह आदि क्या कार्य करने वाले हैं, तो वो अभी तो भगवान कृष्ण के नेतृत्व में काम करेंगे। तो बोलते हैं महाराज उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर किसी के जीवन में लिखा हो कि व्यक्ति बहुत अमीर बनने वाला है, उसके ज्योतिष आचार्य ने बोला हो, शास्त्र में लिखा हो, उसकी जन्म पत्री में बहुत अमीर बनने वाला है, लेकिन अभी वो भक्त बन गया कुछ प्रारब्धों के कारण और कुछ भक्तों की कृपा के कारण, तो अगर ये दोनों चीजें मिश्रित होकर भक्त बन गया तो अभी हो सकता है भगवान कहे कि बहुत पैसा आया ना, तो ये अहंकार हो जाएगा, ये मारा नहीं झपेगा, ये घर में ही अपने भोग विलास में लगा रहेगा, तो हो सकता है कि सब कुछ छीन ले, वो एकदम गरीब हो जाए। लेकिन हो सकता है कि वो बहुत गरीब हो, उसके लिखा हो अरे तुम्हें तो रोटी भी नहीं मिलेगी, घर तो भूल ही जाओ, हो ही नहीं सकता लिखा हो ज्योतिषाचार्य ने, लेकिन भक्त बन गया तो हो सकता है भगवान सोचे कि अरे अगर इसको थोड़ा बहुत रोटी का भी नहीं मिला ना तो ये तो भक्ति छोड़ देगा, अपने पेट पालने के चक्कर में मेरी माला छोड़ देगा, तो भगवान अरेंजमेंट कर सकते हैं कि उसके पास धन आदि आने लग जाए। इसलिए जो भक्त बन जाते हैं महाराज ने उसमें एक्सप्लेन किया, उनके जीवन में कोई ग्रह कार्य नहीं करते, उनके जीवन में तो स्वयं कृष्ण एंटर कर जाते हैं। तो यही प्रीचिंग जो है नंद बाबा वासुदेव जी को कर रहे हैं अदृष्टा प्रारब्ध खेल के कारण। और एक श्लोक में इसमें और बहुत सुंदर आया है जिसमें लोगों का अधिकतर प्रश्न होता है इस अध्याय को लेकर, उसमें कहते हैं
रोहिणी च महाभागा नंद गोप अभिनंदिता व्याशरथ दिव्य वासत्र कंठ आवरण भूषिता।
बलदेव की माता अति भाग्यशाली रोहिणी नंद महाराज तथा यशोदा द्वारा अभिनंदित हुई। उन्होंने भी शानदार वस्त्र पहन रखे थे और गले के हार माला तथा अन्य गहनों से अपने को सजा रखा था। वे उस उत्सव में अतिथि स्त्रियों का स्वागत करने के लिए इधर उधर आ जा रही थी। तो ये रोहिणी वहां कैसे पहुंच गई और वो इतना गहना आदि क्यों पहन रही है? तो हमें से पहले पता रहना चाहिए कि नंद महाराज कौन है, वसुदेव कौन है। तो जो ये यदु डायनेस्टी है, यदु वंश, इसके अंदर जो राजा थे उनका नाम था देवामृत महाराज। वो मथुरा नगरी के राजा हुआ करते थे देवामृत। और इन देवामृत महाराज के दो पत्नियां थी, एक क्षत्रिय और एक वैश्य। जो क्षत्रिय पत्नी थी उनसे उनको संतान उत्पन्न होते जिनका नाम था सूरसेन। और दूसरे जो वैश्य मतलब वैश्य धर्म पालन करते हैं, गोरक्षा और कृषि आदि जो करते हैं, उन लोगों के घर में उत्पन्न होते हैं संतान, उनका नाम था परजन्य। और जो ये परजन्य थे ये इतने ज्यादा दिव्य थे कि इनकी जो क्वालिटीज थी, इनके जो गुण थे, वो ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के जैसे थे। इनके दान देने की जो इनकी शक्ति थी वो बलि महाराज के जैसी थी। बलि महाराज की चर्चा होती है आत्मसमर्पण के अंदर, नवदा भक्ति के अंदर, सब कुछ अपना दान दे देने वाले ऐसे परजन्य थे। और परजन्य का एक अर्थ बादल भी होता है, हम बोलते हैं ना अन्नाद भवति भूतानि अन्नाद परजन्य संभव। परजन्य मतलब बादल, तो बादल नाम मतलब गुणों के बादल, इतना इनके अंदर और जहां जहां इच्छा करे वहीं बारिश कर दे, मतलब सब कुछ देने को तत्पर हो जाए। बादल कैसा होता है कि पूरा बादल है और जहां वो बरसता है वो अपना कुछ नहीं रखता, सब कुछ दान में दे देता है। तो ऐसे जो परजन्य थे वो महावन में रहते थे, गोकुल महावन। और जो सूरसेन थे वो मथुरा के राजा थे। सूरसेन के घर में वासुदेव जी का जन्म होता है जो कि कृष्ण देवकी के पति हैं और कृष्ण के पिता हैं, वासुदेव कृष्ण थे। और जो परजन्य थे उनके घर में पांच पुत्र होते हैं, उपनंद अभिनंद नंद सुनंद और नंदनन नंदन। इसमें से जो नंद महाराज थे वो सबसे ज्यादा तेज थे, अपने पिता जैसे बोलते हैं ना यथा पिता तथा पुत्र, जैसे पिता वैसे ही पुत्र तो थे। वो क्वालिटी सबसे ज्यादा नंद महाराज के अंदर थी, लेकिन सबसे बड़े थे उम्र में उपनंद। तो जब परिजन ने सोचा कि मैं क्या करूं, अब महावन का राजा किसे बनाऊं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, बुजुर्ग हो गया हूं, अभी क्या करना चाहिए। वो आज के जैसे नहीं थे कि बूढ़ा हो जाऊं, गद्दी से धक्का भी दिया जाए तो फिर दोबारा गद्दी पे चढ़ जाऊं, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं आजकल, ये मर जाएंगे तभी गद्दी छोड़ेंगे, ऐसे नहीं थे। वो अपने वानप्रस्थ लेते थे और समय अनुसार 50 वर्ष की आयु के बाद अपने पुत्र को अपनी गद्दी प्रदान करके चले जाते थे। तो उन्होंने भी उपनंद ने क्या सोचा, परिजन ने कि अभी मैं उपनंद को क्या करता हूं, यहां का राजा बनाता हूं। और इसी के बीच वहां पर एक और ग्वाल थे, ग्वाल बाल जो कि बहुत ही ज्यादा धनी थे, उनका नाम था सुमुखा। और उनके घर में एक पुत्री थी जिसका नाम था यशोदा। तो यशोदा जो है, यशोदा का नाम का अर्थ है जिनके साथ में रहने से सब कुछ, हर व्यक्ति का यश बढ़ता है, है ना। आप देखिए यशोदा मैया के पास कौन है, कृष्ण। तो कृष्ण से ज्यादा यशस्वी तो कोई है नहीं, एग्जाम्पल प्रूफ हो जाता है कि यशोदा मैया का नाम जो लेता है वो व्यक्ति क्या बन जाएगा, यशस्वी बन जाएगा, उनका संग पाने से, उनकी लीला स्मरण करने से। इसीलिए हम गाते हैं यशोमति नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। यशोदा नंदन जो है कृष्ण, तो यशोदा मैया की शादी होती है किसके साथ में, यशोदा की नंद के साथ में। तो जब यहाँ पर क्राउन सेरेमनी चल रही थी, अभी किसको राजा बनाया जाए, तो उपनंद की सर पर मुकुट लगाने वाले थे परजन्य, और सारे के सारे गोकुल महावन के लोग इकट्ठे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, उपनंद ने अपने सिर से मस्तक से मुकुट को निकाल कर नंद के सर पर लगा दिया और उनको गले लगाकर कहा कि हे नंद, तुमसे ज्यादा जो गुणवान है वो कोई नहीं हो सकता, हम पांचों भाइयों में सबसे ज्यादा गुणवान कोई है तो वो हो तुम। तो इस तरह से जो ये नंद महाराज हैं, इनके घर में यशोदा जी आती हैं और फिर बाद में ये दोनों क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इनके घर कभी पुत्र या नहीं पुत्र पुत्री कुछ नहीं था, तो इन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान आप हमारे घर पे आए। तो भगवान कृष्ण उनके घर में आते हैं, है ना। तो अभी ये सोचने वाली बात है कि यशोदा नंद के घर में कृष्ण क्यों आते हैं और वासुदेव देवकी के घर में कौन आते हैं। वासुदेव और देवकी तो हैं, वो नारायण की पूजा करते थे, तो उनके घर में विष्णु आते हैं, वसुदेव कृष्ण, वो यशोदा नंदन कृष्ण नहीं है। यशोदा नंदन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण जो विष्णु है वो दोनों अलग है, डिफरेंट है। वो चतुर्भुजी रूप विष्णु है और ये दो हाथ वाले कृष्ण है जो आदि भगवान है, जिनकी ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं, कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। तो इस प्रकार के जो है वो वसुदेव जी के घर में कृष्ण आते हैं। और नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में कृष्ण ओरिजिनल क्यों आते हैं, क्योंकि धाम में तो यशोदा मैया और नंद बाबा के ही है कृष्ण, तो वो जब लीला करने यहाँ आते हैं तो वो अपने पिता माता को छोड़ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने पहले यशोदा मैया नंद बाबा को भेजा और स्वयं उनके घर में दोबारा से आते हैं। तो ये प्रार्थना पर नहीं आ रहे हैं, प्रार्थना पर तो वसुदेव और देवकी के घर में आ रहे हैं, लेकिन यशोदा के घर में तो भगवान अपनी लीला करने आ रहे हैं, क्योंकि वो सारे के सारे धाम से आ रहे हैं, यशोदा नंद बाबा और कृष्ण, हम बाकी अनेक लोग भी आ रहे हैं साथ में। तो यहाँ पर जो रोहिणी है वो वासुदेव जी की दूसरी पत्नी है, जिनके घर में बलराम हो रहे हैं। तो भी वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी किसके पास रह रही है, नंद बाबा के पास में, और उनके घर बलदाऊ का जन्म होता है, बलराम का जन्म होता है, और यशोदा के घर में कृष्ण का जन्म होता है। लेकिन जो यहाँ पर है देवकी, उनके घर में वासुदेव मतलब चतुर्भुजी रूप विष्णु कृष्ण का जन्म हो रहा है, वासुदेव कृष्ण। तो वो बोलते हैं कि आप दोबारा नॉर्मल हो जाइए, आपने सुना है सब लोग बोलते हैं भगवान चतुर्भुज रूप में आपको कंस ने देख लिया तो आपको वो मार देगा। वो ये नहीं समझ रहे स्वयं नारायण या कृष्ण आ गए हैं, इनको कौन मार सकता है, ये तो स्वयं काल इनके नीचे शरणागत है, तो ये किसको मार सकते हैं, इसको इनको कौन मारेगा। लेकिन उनकी प्रार्थना करने पर यशोदा मैया कहां जो कृष्ण था वो बताते हैं योग माया से यहाँ पर आ जाते हैं, कहां पर देवकी के पास में जाते हैं, और फिर दो हाथ वाले बन जाते हैं। तो दो हाथ वाले क्यों, क्योंकि कृष्ण से भी विष्णु निकलते हैं, हम सुनते हैं ना कृष्ण से बलराम, बलराम से विष्णु, चतुर्व्यूह निकलते हैं उनसे महाविष्णु निकलते हैं, तो इस तरह से तो कृष्ण जो है उनके अंदर विष्णु समा जाते हैं और फिर वो दो हाथ वाले दिखने लगते हैं। तब देवकी वासुदेव कहते हैं हाँ अभी आप नॉर्मल बन गए, अभी ठीक है, अभी हम आपको टोकरी में रखकर लेकर जाएंगे। तो फिर वो वहां उनको लेकर जाते हैं और नंद महाराज के घर में कौन होता है, पुत्री उत्पन्न होती है, तो पुत्री को उठाते हैं और फिर या कृष्ण को वहां लेटाते हैं और फिर वापस पुत्री को लेकर आते हैं, जो कि योग माया की शक्ति से क्या होती है, दुर्गा देवी बन जाती है और कंस को बोलती है कि तुम्हारे मारने वाला तो पहले से ही पैदा हो चुका है, और कहकर वो अपने ऊपर के लोगों में चले जाते हैं। तो अपनी पुत्री के जाने से, सातवें पुत्र के गर्भपात से और छह पुत्रों के मर जाने से वासुदेव जी दुखी है यहाँ पर। तो इसके कारण नंद बाबा उनको सांत्वना दे रहे हैं, क्योंकि उनके घर तो कृष्ण आ चुके हैं, और जिसके पास कृष्ण है उसके पास टेंशन नहीं होती, वो तो प्रीचिंग करता है। हम प्रीचिंग क्यों नहीं कर पाते भावपूर्ण तरीके से, क्योंकि हमारे जीवन में कौन नहीं है, कृष्ण नहीं है, हमारे पास टेंशन बहुत होती है, इसलिए हमारे प्रचार में लोग जुड़ते नहीं है, हमारा प्रचार तो अचार के जैसा हो गया, नींबू का अचार, आम का अचार, हमारा प्रचार में भाव नहीं है, उसकी शक्ति नहीं है, क्योंकि हमारे पास कृष्ण नहीं है। लेकिन नंद बाबा यहाँ पर वासुदेव जी को समझा रहे हैं। तो जो ये श्लोक है 17वां श्लोक, इसमें लोग पूछते हैं कि रोहिणी के जो पति थे वासुदेव वो तो रहे जेल के अंदर, और यहाँ पर उनके बलदाव हुए हैं, उनको नंद और यशोदा ने क्या दिया, गहने दिए, और उन्होंने उन गहनों को धारण भी कर लिया, उनको दुख नहीं हुआ कि मेरे पति तो वहां है बाहर है और मैं हूँ अकेली यहाँ पर, क्यों इतना सजू, इतना क्यों गहनों को पहनू। तो यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है जानने लायक, पहली तो कि वृंदावन में कोई दुखी नहीं होता, गोकुल महावन में कोई दुखी नहीं होता, वहां पर ये कंपटीशन या एनवियसनेस नहीं होता कि वो जेल में चले गए तो हम रोते रहे, वहां पर सब कोई ये जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो दो कारणों से, भगवान के कारण और एक अदृष्ट हमारे प्रारब्धों के कारण हो रहा है, वहां पर सभी लोग ये जानते हैं, इस बात से नोन रहते हैं। हम रोते क्यों है, दुखी होते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि हर एक चीज में भगवान और हमारे ही अप्रारब्धों का खेल है। हम जब ये जान जाएंगे तो जो कुछ भी होगा हमारे जीवन में हम उससे विचलित नहीं होंगे कभी भी, पहली चीज, इसलिए रोहिणी प्रसन्न है। और दूसरा कि जो नंद महाराज और यशोदा मैया ने गिफ्ट दिए, तो उनके जो गिफ्ट देने के पीछे इंटेंशन था, भाव था, प्रेम, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या बन जाता है, टॉप मोस्ट बन जाता है, है ना। जैसे हम अगर किसी को कुछ चीज देते हैं तो उसके पीछे हमारा जो भाव है, प्रेम है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे हम किसी को 10 रुपए की वस्तु दें या 1000 रुपए की कोई व्यक्ति वस्तु दे, लेकिन अगर 10 रुपए की वस्तु में प्रेम ज्यादा है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके पीछे का प्रेम इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही नंद बाबा और यशोदा मैया ने उनको क्या दिया, कृष्ण के जन्म उत्सव में क्या दिया, उनको बहुत सारी भेंटें दी और सारे ग्वाल वालों को बांटा, गाय बांटी, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दिया, रोहिणी को भी दिया कि रोहिणी ये लीजिए, आपके पति नहीं है लेकिन आप दुखी मत होइए, आप ये लीजिए, गहने पहनिए, और उन्होंने पहन भी लिए। जैसे एक बार हमें ये चीज समझना चाहिए कि हायर प्रिंसिपल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हायर प्रिंसिपल, जैसे कुछ लोग बोलते हैं मंदिर के अंदर बोलना नहीं चाहिए, रूप गोस्वामी कहते हैं अपराध है मंदिर के अंदर बोलना नहीं चाहिए. तो एक हम पूछ रहे थे कि आप लोग तो रोज सुबह 8 से 9 शाम को 8 से 9 इतना बोलते हो मंदिर के अंदर, तो हायर प्रिंसिपल क्या है कि यहाँ पर प्रचार हो रहा है, लोगों को भक्त बनाया जा रहा है, प्रजल्पन नहीं करना चाहिए मंदिर में विग्रह के सामने, मंदिर की मूर्ति के सामने. तो रूप गोस्वामी ने लेक्चर ऑफ डिवोशन में बहुत सारे सेवा अपराध और विग्रह के सामने चीजें बताई है, नहीं करनी चाहिए मंदिर प्रांगण में, बातें नहीं करनी चाहिए, ऊपर वस्त्र पहने बिना नहीं आना चाहिए, किसी को चेस्टाइज, किसी को डांटना नहीं चाहिए, किसी की गुणगान नहीं करनी चाहिए, इस तरह से बहुत सारी चीजें. लेकिन हायर प्रिंसिपल क्या है कि प्रचार इंपॉर्टेंट है, लोगों का भक्त बनाना है ना. तो इसलिए वहां पर ये हायर प्रिंसिपल था कि रोहिणी को, नंद और यशोदा को प्रसन्न करना था, कृष्ण को प्रसन्न करना था, इसलिए उन्होंने उसको धारण किया. एक बार राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे अपने प्रवचन के दौरान, वो बोलते हैं कि एक बार वो पुजारी थे टेंपल में, टेंपल में पुजारी होते हैं, पुजारी टेंपल में आरती कर रहे थे और एक सन्यासी टेंपल के अंदर एंटर करते हैं. सन्यासी जब टेंपल में एंटर किए तो सारे के सारे भक्त क्या करेंगे, सन्यासी को देखकर प्रणाम करेंगे, तो उन्होंने दंडवत प्रणाम कर दिया. तो जो सन्यासी थे वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, तुम लोगों को समझ नहीं है, हाँ बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर, ये क्या कर रहे हो तुम, भगवान के विग्रह के सामने प्रणाम नहीं करते किसी को भी, भगवान के आगे सिर्फ भगवान ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कोई नहीं होता, रूप गोस्वामी के आपने भक्ति रसामृत सिंधु नहीं पढ़ा, ऐसे करके चिल्ला रहे थे. तो हिजोलिनस राधानाथ स्वामी महाराज अपने प्रवचन में बोल रहे थे कि मैंने सोचा कि ये भी तो लिखा है रूप गोस्वामी ने कि भगवान के मंदिर के प्रांगण में किसी को डांटते नहीं, ये भी तो लिखा है, ये भी तो एक प्रकार का अपराध है. लेकिन मैं वो सन्यासी थे और मैं तो एक पुजारी था, मैं बोल नहीं सकता था इस बात को, तो मैंने बोला नहीं. तो ये समझना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है. तो वहां पर जब उन्होंने वो डांटा तो कई लोगों का दिल टूट गया, कई लोग अनजाने में सिर्फ सन्यासी वेश देखकर प्रणाम किए. जैसे चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे तो उनको देखने मात्र से लोग प्रणाम करते थे और कृष्ण भक्ति प्राप्त करते थे, तो उनका कईयों का दिल टूट गया सन्यासी ने जब डांटा उनको ना, कई लोग रोने लग गए, कोमल भक्ति थी, श्रद्धावान नहीं थे, वो मंदिर आना बंद कर दिए. तो इन्होंने राधानाथ स्वामी महाराज बोल रहे थे व्हाट इज इंपॉर्टेंट, अगर अगर देखा जाए दोनों अपराधों को कंपेयर किया जाए, वैसे तो कंपेयर नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी कंपेयर किया जाए, तो महाराज बोल रहे हैं कि ये देखिए कि किसी का दिल तोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर थोड़ा सा अपराध, कृष्ण भी समझ जाएंगे चलो भक्ति प्रदान करने के लिए सन्यासी को प्रणाम किया चला लो, इस अपराध को चला लेना चाहिए, तो कौन सा ज्यादा हल्का है. तो उन्होंने कहा किसी का अगर दिल रह जाए तो वो इंपॉर्टेंट है. ऐसे हम भी देखते हैं कई बार प्रचार के लिए जाते हैं या फिर कहीं पर जाते हैं तो लोग अगर पांव छू लेते हैं जबकि हम बोलते हैं नहीं 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 मत छूए मत छूए, ये अपराध है, आप प्रणाम कर सकते हैं. तो इस तरह से इजोलिनस राधा गोविंद स्वामी महाराज अपने प्रवचन में बोल रहे थे कि हमें डांटना नहीं चाहिए किसी व्यक्ति को, क्या कर दिया, पैर छू लिया, बुद्धि नहीं आपके अंदर, बोले अभी तो इतना अच्छा प्रचार किया, डांटना नहीं चाहिए, शीतलता रहनी चाहिए, ये रहना चाहिए वो रहना चाहिए, अभी कहां चली गई वो शीतलता, भक्त कहां चला गया. तो आप उनसे प्रेम पूर्वक बोल सकते हैं ये आपने किया ये ठीक नहीं, अभी तो कर लिया आगे से मत करिएगा, हाँ थोड़ा समझिए वैष्णवों में ऐसे किया जाता है, वांछा कर पतुर्भुषिया, ये तरीका ठीक है, ऐसे बताना चाहिए. लेकिन आपने अगर उसे डांट दिया तो अभी जो एक घंटा प्रचार किया वो सब नष्ट हो जाएगा, कभी माला नहीं पकड़ेगा, कहे गद्दी पे बैठ के इतना बोला और उतरते एकदम चेंज, पूरा डांट दिया. और अगर कोई छू भी जाता है ना तो बोले अपने गुरु परंपरा और श्रील प्रभुपाद और अपने ठाकुर जी राधा गोविंद देव, हाँ भगवान को बोलना चाहिए, भगवान मैं इस लायक नहीं हूं, ये तो आप ही का है, तो जस्ट टेक इट, तो फिर आपका कुछ है नहीं, आपको कोई अहंकार नहीं आएगा. लेकिन डांटना कहीं पर भी नहीं है, कोई भी हम देखते हैं ना भक्त कोई गलती कर रहा है मंदिर में भी, तो हमें उसको प्रचार तो करना चाहिए लेकिन डांटना हमारे को नहीं, तो हमें देखना है कि उसका हृदय बता रहे महाराज वो इंपॉर्टेंट है. तो ऐसे ही रोहिणी ने भी गहनों को धारण किया, उसके पीछे इंपॉर्टेंस क्या है कि नंद बाबा यशोदा मैया का हृदय लगा हुआ है. तो इस तरह से हमको समझना चाहिए इसके अंदर कि किसी का हृदय नहीं टूटना चाहिए. तो बताते हैं कि जो भगवान थे वो मथुरा से गोकुल क्यों चले गए, भगवान तो वसुदेव जी के जन्म लिए थे तो वहीं पर वो वध कर सकते थे कंस का, वो जरूरत क्या थी गोकुल गए और फिर वापस 11 वर्ष की उम्र में वापस आए. तो लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि कृष्ण वृंदावन से चले गए राधा रानी और ग्वाल बालों के साथ ऐसा त्याग, इतने इतना गलत व्यवहार क्यों किया. तो वो लोग जानते नहीं है कि भगवान अपने कही हुई बातों से कभी टलते नहीं है. भगवान ने बोला वृंदावन परित्याजम एकम पदम न गच्छति, वृंदावन का परित्याग करके मैं कभी नहीं जाऊंगा. तो अक्रूर जी जब 11 वर्ष की उम्र में कृष्ण को लेने के लिए आ रहे हैं तो कौन से कृष्ण जा रहे हैं वहां से? वासुदेव कृष्ण, जो कि वासुदेव जी के घर जन्म हुआ था। लेकिन जो यशोदा कृष्ण है, जिनका जन्म वृंदावन में होता है, जो सदा वृंदावन में ही रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। वृंदावनम परित्याजम एकम पदम न गच्छति, मैं छोड़ के कहीं जाता ही नहीं हूं। तो कृष्ण सदा वृंदावन में विराजमान है, लेकिन हमें दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे ऊपर क्या है, भक्ति के अंजन नहीं लगा, भक्ति का काजल नहीं लगा हमारे ऊपर। तो भौतिकता का काजल है, माया घिरी हुई है। तो चश्मा चेंज कराना पड़ेगा, नंबर चेंज कराएंगे तो फिर प्रेम मंजन छरित भक्ति विलोचने ना संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। तब हम उनका भजन कर पाएंगे, श्याम सुंदर का दर्शन कर पाएंगे, जब प्रेम का अंजन, प्रेम पूर्वक भक्ति करेंगे। कठोर भक्ति में, हार्ड भक्ति है ना, जब भी करते हैं सब कुछ करते हैं और द्वेष भरा हुआ है, या लोगों से बहुत हार्श तरीके से बोलते हैं, ये तुमने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। अरे अगर हम ये सब बोलेंगे तो गड़बड़, सॉफ्ट होना पड़ेगा, बहुत सॉफ्ट एकदम, विनम्रता लेके आनी पड़ेगी। त्रणादपि शुनिचेना, रोज बोलते हैं ममानिनान मान देना, कीर्तनम सदा हरि, बहुत सारी चीजें हैं जिनको अपने कंठ में, कंठी माला में धारण करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, प्रभुपाद कभी इस प्रकार से नहीं डांटते थे, डांटते थे बाद में पेसिफाई बहुत करते थे, और प्रभुपाद के डांट में मिठास होती थी। हमारी डांट में तो हम तो वह प्रभुपाद जी की बराबरी कर ही नहीं सकते, हम डांटेंगे तो भक्त छोड़ के चला जाता है मंदिर, तो इसलिए हमें सोचना चाहिए। तो भगवान क्यों गए गोकुल? क्योंकि भगवान वहां लीला करना चाहते थे। अगर वहां नहीं जाते तो पूतला वध कैसे होता, तृणावृत वध कैसे होता, और हमें सुनने से हमारा शुद्धिकरण कैसे होता? तो हमारे को सुनाने के लिए, हमारे शुद्धिकरण के लिए भगवान ने लीला करी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण क्या था, महत्वपूर्ण भगवान के गोकुल जाने का कारण, माखन खाना। मथुरा में इतना मक्खन नहीं मिलने वाला था भगवान को, और वहां पर क्या था, यहाँ पर अगर मक्खन मिलता भी तो कौन बनाता? वसुदेव जी तो राजा थे, कंस तो राजा था, तो वसुदेव जी राजा थे तो कौन बनाता? दासियां बनाती, और उनका मक्खन भगवान ने खाना चाहता। भगवान किसका खाना चाहते हैं? भक्त का। इसलिए भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति। क्या बनाया इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे भोग लगाया इंपॉर्टेंट है। मैं तो पत्ते से भी खुश हो जाता हूँ, छप्पन भोग इंपॉर्टेंट नहीं। अरे ये कुकिंग वो कुकिंग नहीं, अरे जो बनाया, लेकिन भगवान जी बस यही है, आपने दिया खा लीजिए। जैसे सनातन गोस्वामी मिट्टी की बाटी बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं, और भगवान कहते हैं मदन मोहन कि क्या कर रहे हो सनातन, मुझको तुम कम से कम नमक तो डाला करो, ये रुखा रुखा मिट्टी खाने से मुझे, मेरा पेट नहीं भरता है। तो बोले देखो मैंने तो पहले कहा था, मैं तो संत हूँ और वो भी वैरागी, वृंदावन में रहता हूँ, मेरा तो घर भी नहीं है, पेड़ के नीचे रहता हूँ, और अब आप नमक मांग रहे हो, कल को कहोगे छप्पन भोग लगाओ, मैं तो इसी में बिजी हो जाऊंगा, फिर भजन कब करूंगा, मैं नहीं लगाऊंगा नमक, जैसे खाना खा लो। तो ये बात, ये सब संवाद है भगवान का प्रेम पूर्वक। तो ऐसे ही भगवान मक्खन खाने के लिए गोकुल चले जाते हैं, और वहां पर कॉम्पिटिशन होता है। जैसे एक बार यशोदा मैया नंद बाबा को, यशोदा मैया कृष्ण को दूध पिला रही थी, क्योंकि कृष्ण सुबह सुबह उठकर क्या बोलते थे, मुझे दूध पीना है, दूध पीना है। तो यशोदा मैया उनको स्तन पान करा रही है, और उनके स्तन से दूध समाप्त भी नहीं हो रहा, जितना पीना पियो, क्योंकि वो भी तो ट्रांसेंडेंटल मिल्क है ना, वो कोई भौतिक मिल्क नहीं है, वो खत्म नहीं हो रहा, और संतुष्टि प्रदान कर रहा है कृष्ण को, और कृष्ण पीते जा रहे हैं। और इतने में सामने जो दूध रखा था वो उबलने लगता है, आपने सुना है दामोदर लीला में। तो फिर भगवान क्या, वो यशोदा मैया क्या करती है, उस दूध को बचाने के लिए कृष्ण को जमीन में रख देती है, नीचे रख देती है, और कृष्ण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं वृंदा मथुरा से गोकुल आया किस लिए, यशोदा मैया का दूध पीने, मक्खन खाने, और इन्होंने इस दूध के चक्कर में मुझे नीचे रख दिया, और बिल्कुल उनको पसंद नहीं है, कॉम्पिटिशन लग गया कि अभी या तो ये दूध या तो फिर यशोदा मैया का दूध, दोनों में कॉम्पिटिशन लग गया। और फिर जब यशोदा मैया उस दूध को उठाने चली गई तो इन्होंने पीछे से क्या किया, डंडे से उसको तोड़ दिया, मटकी को फोड़ दिया। तो यहाँ पर एक भक्त थे गुरुवायूर टेम्पल में साउथ इंडिया में, गुरुवायूर टेम्पल में, उनका नाम था नारायण भट्ट, जो कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय के आचार्य हुए हैं। तो नारायण भट्ट अपने नारायणी ग्रंथ में लिखते हैं कि एक बार ये जो लीला है वो रोज 10 श्लोक लिखा करते थे भागवतम के, सुखदेव गोस्वामी के पढ़ते थे, और फिर उसमें से तात्पर्य लिखते थे, और फिर भगवान को भेंट चढ़ाते थे कि भगवान अगर सब कुछ ठीक लगे तो फिर मैं आगे लिखूं, तो फिर कभी कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन एक बार जब उन्होंने ये लिखा कि भगवान ने मटकी को पत्थर से फोड़ा, जैसे भागवतम में आता है, मटकी को पत्थर से फोड़ा, गुस्से में आके पत्थर उठाकर मारा, ईंट मारा या पत्थर मारा, तो भगवान ने कहा कि तुमको कैसे पता कि मैंने पत्थर मारा, तो वो एकदम घबरा गए, गोपाल जी बात कर रहे हैं आज तो नारायण भट्ट कर, तो बोले हाँ तो भगवान कैसे कैसे फोड़ा, कह रहे तुम वहां पर थोड़ी देर, मैं था वहां पर, मैंने फोड़ा, तुमको कैसे पता पत्थर से फोड़ा, तो बोले मैंने तो शास्त्र में जो पढ़ा वो लिख दिया, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, लकड़ी डंडा लिखो, डंडे से फोड़ा मैंने, तो बोले अच्छा लेकिन आपने डंडे से क्यों फोड़ा, क्वेश्चन उठाया उन्होंने कि डंडे से क्यों फोड़ा, पत्थर से फोड़ सकते थे, तो बोले मैंने डंडे से इसलिए फोड़ा ताकि मैया को ये शक ना हो कि मैंने फोड़ा, उसको लगे कि मैं ही मथन कर रही थी और मेरी डंडा लगने से मटकी फूट गई, तो ये बात बताने के लिए उन्होंने कहा मैंने डंडे से फोड़ा, तो फिर वहां पर लिखा गया कि डंडे से उन्होंने उस मटकी को फोड़ा। लेकिन फिर नारायण भट्ट जी ने पूछा कि जब आपने ये सारी चाल चली ली थी कि डंडे से फोड़ा ताकि पता ना चले, तो फिर भागे क्यों जब यशोदा मैया, तो बोले देखो असलियत में तो मैंने ही फोड़ा था ना, तो मुझे भागना पड़ा, तो मुझे भागना पड़ा। तो इस तरह से उनका जो चर्चा होती थी, तो उसके कारण फिर बाद में उन्होंने अपनी नारायण ग्रंथ में लिखा कि पत्थर से नहीं, सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं पत्थर से तोड़ा, लेकिन वो लिखते हैं कि डंडे से फोड़ा, किस कारण से, ताकि कभी शक ना करे। तो यशोदा मैया जो है वो अपने कृष्ण को गोदी में रख पाती थी, लेकिन हम कृष्ण को गोदी में नहीं रख पाते, अपने दिल में नहीं रख पाते, हम उनको पकड़ नहीं पाते, क्यों, क्योंकि हम यशोदा मैया की तरह शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, हम जितना जितना जप करेंगे उतना उतना शुद्ध होंगे, उनके जैसा शुद्ध होना मुश्किल है, क्योंकि वो तो भगवान की हम एटर्नल मदर है, शाश्वत हमेशा साथ रहने वाली उनकी लीला में है, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि इस जगत में जब तक हम हैं, कृष्ण को हम अगर अपने चाहते हमारे गोदी में रहे, जन्माष्टमी आ रही है तो जन्म होने वाला है कृष्ण का, और कृष्ण जन्म होते ही हमारी भी गोदी में है, जैसे होता है ना जिसके घर में बच्चा उत्पन्न होता है सब लोग जाते हैं थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं, तो कृष्ण हमारी भी गोदी में आए तो फिर कब आएंगे, जब हम शुद्ध हो जाएंगे, तब तक हम माया में रहेंगे तब तक हमारी गोदी में कृष्ण नहीं आने वाले हैं। जैसे एक बार एक भक्त थे, उन्होंने श्रील प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि आप आजकल मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आते हो, कहां बिजी रहते हो, तो उन्होंने जवाब दिया प्रभुपाद मैं माया में हूं, प्रभुपाद के प्रवचन सुन के प्रभुपाद को प्रवचन दे रहे हैं, प्रभुपाद जी मैं माया में हूँ, तो प्रभुपाद ने कहा नो प्रॉब्लम, कल सुबह माया को भी साथ लेके 4:30 बजे मंगला आरती आ जाना, माया को भी लेकर आ जाना, तो प्रभुपाद जी इस तरह से उत्तर देते थे, और भक्त जो थे वो एकदम विचलित रहते थे, अभी क्या जवाब दूं, माया वाला तीर तो खराब हो गया मेरा। हाँ, एक डिवोटी ने बोला कि प्रभुपाद जी मैं ना आजकल जप सही से नहीं कर पा रहा हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है स्पिरिचुअल लाइफ, हाँ कभी जप करो, सेवा करो, शास्त्र पढ़ो, प्रचार करो, फिर फैमिली देखो, बहुत मुश्किल, नहीं हो पा रहा, स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट। तो प्रभुपाद ने कहा यस आई नो स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल, भौतिक जगत तो नामुमकिन है, उसमें तो जीना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ तो कम से कम मुश्किल है, वहां तो नामुमकिन हो जाएगा। तो इस तरह से प्रभुपाद जी के उत्तर से लोग घबरा जाते थे, और एक बार एक तो बाहर के व्यक्ति ने बोला श्रील प्रभुपाद से कि आपके जो मंदिर के ये भक्त है ना, ये इतना बुरा बर्ताव करते हैं, कभी कभी मंदिर में जाओ अगर लेफ्ट को बैठ जाओ माता के, मैं प्रभु जी बैठ जाए, प्रभु की माता बैठ जाए, ए उठो उधर बैठो उधर, ऐसे करके बोलते हैं, ये कोई भक्त है, ये कोई ट्रीटमेंट होता है, ये प्रसाद की लाइन तोड़ दो चलो लाइन में लगो, ऐसा लगता है जेल में आए हम, ऐसे करके ट्रीट करते हैं हमारे को इस कॉल में। तो उस तरह से प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी ने कैसे अपने भक्तों को डिफेंड किया, प्रभुपाद जी बोले कि देखिए ये ना इस्कॉन टेम्पल नहीं है, ये हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल के अंदर सभी कौन आते हैं, तो बोला मरीज आते हैं, कह रहे देखिए कुछ सर्दी खांसी जुकाम के मरीज हैं, कुछ आईसीयू के पेशेंट्स हैं, सर्दी खांसी जुकाम वाले तो थोड़ा सा माला करते हैं, थोड़ा भक्त संग करते हैं, साल दो साल में ठीक हो जाते हैं, और कुछ आईसीयू वाले हैं ना उन्हें लंबा समय लगता है, ड्रिप्स चढ़ रही है, आईवी फ्लूइड चल रहा है, और बहुत टाइम लगेगा उनको भक्त बनने में, इसलिए कम से कम लेकिन वो उससे तो बेहतर है जो व्यक्ति बाहर घूम रहा है, खांस भी रहा है, डायबिटीज भी है, कैंसर भी है, मलेरिया भी है, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने नहीं आ रहा, कम से कम वो आ तो गया डॉक्टर को दिखाने, उसका इलाज चालू हो गया, तो वो उससे तो बहुत बेटर है। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, उन्होंने कहा और देखिए सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर के पास आने के बाद, हॉस्पिटल में आने के बाद, वो डॉक्टर की बात भी मानता है कि देखो 3 गोली खाना 4 गोली खाना, लेकिन अगर वो मैं उसको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दूं, जैसे होता है ना डिस्चार्ज कर दिया, डिस्चार्ज करने के बाद डॉक्टर बोलता है घर जाकर ये गोलियां खाना, तो पेशेंट ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन खाते हैं, फिर खाते ही नहीं, कहते बहुत ऑलरेडी इतना ड्रिप्स चढ़ गए, इतना आईवी चढ़ गया, अभी और बर्दाश्त नहीं हो सकता, अभी तो जो डॉक्टर ने देना था दे दिया, अब हम नहीं खाएंगे। लेकिन अगर वो पेशेंट को एडमिट रखे हॉस्पिटल में, तो नर्स जबरदस्ती मुंह खोलो टका अंदर डाल देते हैं, बंद करो खाओ, तो वो जबरदस्ती खाना पड़ता है, इसलिए जब तक इस कॉन में कोई व्यक्ति रहेगा उसका इलाज चलता रहेगा, अगर मैं उसको धकेल दूं बाहर निकाल दूं कि तुमने ऐसा बिहेव किया जाओ बाहर जाओ, तो उसका तो इलाज ही बंद हो जाएगा, तो फिर वो तुम्हारे जैसा हो जाएगा, कम से कम आईसीयू पेशेंट है लेकिन इलाज तो चल रहा है उसका। है ना। तो श्रील प्रभुपाद इस तरह से उत्तर देते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में भक्त भक्ति करनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, साधुओं का संग करना चाहिए, प्रभुपाद जी के शास्त्र पढ़ने चाहिए। और प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा कि शास्त्र पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन शास्त्रों में जो आपको अच्छा लगता है, भगवद गीता, भागवतम, चतन चतमृत, उन सारे ग्रंथों में से कोई भी एक श्लोक चुनिए और अपने जीवन में उसको धारण करिए। फिर देखिए आप जीवन में असली भक्त बन रहा है। कोई एक श्लोक, ओनली वन श्लोक आउट ऑफ एनी बुक्स, किसी भी ग्रंथ से। श्रील प्रभुपाद की। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी पूछिए। रामानंदी संप्रदाय, हाँ मतलब ये संप्रदाय हम जो सुनते हैं रुद्र संप्रदाय, कुमार या फिर वो, लेकिन राम राम भगवान को पूछने वाले अयोध्या या इलाहाबाद उस साइड में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि रामचंद्र जी का भजन करते हैं, राम राम बीज मंत्र का उच्चारण, क्योंकि जो ये संप्रदाय है, हम तो कृष्ण संप्रदाय की बात करते हैं ना। कृष्ण ने ज्ञान लक्ष्मी जी को दिया, कृष्ण ने शिव जी को दिया, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, चतुर कुमार को, लेकिन रामचंद्र जी की तो हम चर्चा नहीं कर रहे ना। तो राम जी की एक संप्रदाय है जहाँ पर रामानंदी संप्रदाय बोलते हैं, राम राम बीज मंत्र का ही उच्चारण करते हैं और फिर उसी में राम कथा करते हैं, वो इम्पोर्टेंट। तो उधर एरिया में आप जाएंगे तो मिलेगा आपको रामानंदी संप्रदाय। तो कृष्ण संप्रदाय नहीं, रामानंदी संप्रदाय। दे आर नॉट परफेक्ट बिकॉज कृष्ण संप्रदाय इज परफेक्ट, लेकिन स्टिल दे आर वर्शिपिंग राम, तो वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कंस, लेकिन कुछ शास्त्र में वर्णन आ रहा है कि हिरण्यकश्यप कंस का, क्योंकि बहुत सारे प्रवचनों में राधा गोविंद महाराज, फिर राधानाथ स्वामी महाराज अपने प्रवचन में बोल रहे हैं कि हिरण्यकश्यप ने कंस के रूप में जन्म लिया। तो जैसे बोलते हैं कि कलयुग में तो आते नहीं है, वो तो तीन ही बार आते हैं, लेकिन कुछ लोग चर्चा करते हैं कि जगाई बधाई बनकर भी चार बजे आते हैं। तो इस तरह से अनेक शास्त्र में अनेक वर्णन आते हैं, या फिर बोल सकते ना हमेशा सक्सेस मंत्र, कल्प भेद, सक्सेस की है डिवोटीज के पास कल्प भेद। जी हाँ, गोपाल भट्ट, नारायण भट्ट। हाँ गलत नहीं बोला ना, लेकिन उनका रियलाइजेशन है भगवान के साथ में, गलत तो कुछ भी नहीं होता। भगवान की लीला में सब कुछ ट्रांसेंडेंटल है, उनका पटका हो, उनका गद्दी हो, सब कुछ ट्रांसेंडेंटल है। अलग अल अलग हम जैसे अभी बोला ना कि कल्प में अलग अलग कल्पों में अलग अलग लीला भगवान करते हैं। जैसे राधा रानी का जन्म कभी तो रावल में होता है, कभी वो उनको बरसाना में फूल के ऊपर प्राप्त होती है। एक जगह आता वर्णन कि पूतना सारे लोगों को मार रही थी, तो राधा रानी जब पैदा होती है तो उनको उठाकर ले जाती है और साउथ इंडिया में ड्रॉप कर देती है, तो साउथ इंडिया में राधा रानी का जन्म होता है। तो अनेकों अनेकों लीलाएं आती है, क्योंकि जो कल्प है ना ये साइकिल है, जैसे सत्ययुग, त्रेतायुग, कलयुग, द्वापर युग। तो अगर यहाँ पर सत्ययुग में आपको स्टार लगा दे साइकिल के टायर में और फिर घुमाए, तो वो घूमते 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 ये तो साइकिल चलता रहता है। तो एक कल्प ब्रह्मा जी का जब समाप्त होता है तो उसमें 100 वर्ष होते हैं, और 100 वर्ष में ब्रह्मा जी के एक जो वर्ष है उसके अंदर 365 दिन है, और 365 दिन में जो एक दिन है उस एक दिन के अंदर 24 घंटे हैं, और उनके जो 12 घंटे हैं उस 12 घंटे में वो 14 मनु को उत्पन्न करते हैं, और 14 मनु जो है उसमें से एक मनु 71 टाइम चतुर्युग में जाता है, और एक चतुर्युग साइकिल जो है वो 43 लाख सालों का है, जिसमें सत्ययुग जो है वो 17,28,000 सालों का है, त्रेतायुग 12,96,000 सालों का है, द्वापर 8,64,000 वर्षों का है, और कलयुग 4,32,000 वर्षों का। तो इस तरह से ये साइकिल चलता है, और जब ये कल्प चेंज होता है, मतलब ब्रह्मा जी के जब 100 वर्ष इस तरह से समाप्त होते हैं, तो फिर भगवान दोबारा प्रकट होते हैं, फिर अपनी दोबारा लीला करते हैं। तो हर लीला में भगवान, अभी एक ही चीज करके तो हम भी बोर हो जाते हैं ना, तो भगवान भी चेंज कर लेते हैं, चल आज लकड़ी से आज पत्थर से, लेकिन लीला सेम रहती है, ऑलमोस्ट इट इज सेम, बट समटाइम्स इज डिफरेंट। और कोई प्रश्न? श्री राधा गोविंद भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, पंचतत्व गौड़ गाय की जय, पद का पावन शैल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, हिताय हिताय गो प्रेमानंदे हरि निगम जय। धन्यवाद।